रूत अध्याय एक। आइए अब हम रूत की पुस्तक को पढ़ें। पिछले अध्ययन में हम न्यायियों की पुस्तक को पढ़ रहे थे। वहां हमने देखा था कि ऐतिहासिक रूप से उस पुस्तक का अंत अध्याय 16 में आकर शिमशोन की कहानी के साथ हो जाता है। अध्याय 17 से आगे अंत तक जितनी भी घटनाएं लिखी गई है केवल इसलिए है कि इसराइल राष्ट्र की आत्मिक अव्यवस्था और आत्मिक पतन को दर्शाया जाए। जब दान वंशी अपने भूभाग पर अधिकार कर रहे थे तब उनका एक भाग उत्तर की ओर था। अब ये कैसा हुआ कि उन्हें ये युवा पुजारी मिल गया और वे छोटी छोटी मूर्तियां उनके पास आ गई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि वो समय पूरी तरह से आत्मिक पतन का समय था। तब उनके नैतिक पतन का समय आ गया, जैसा कि हम देखते हैं कि बिन्यामिनियों ने कैसा कुकर्म किया था। गिबा के लोगों के द्वारा जो कुकर्म किए जाने लगा था और हमने उसका परिणाम को भी देखा है। ये वहां होने वाली गतिविधियों का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ उसी समय में एक और कहानी चल रही थी जो रूत की पुस्तक में दी गई है। रूत अध्याय एक पद एक में, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। रूत की पुस्तक न्यायियों की पुस्तक का ही एक भाग है। ये कहानी उस समय की है जब न्यायी लोग इसराइल पर राज्य करते थे। ये आत्मिक अव्यवस्था तथा नैतिक पतन का समय था, तथापि परमेश्वर इन सब के मध्य उन मनुष्यों में अपनी योजना पूरी कर रहा था जिनके मन परमेश्वर के प्रति खुले थे। ये हमेशा सत्य है। यद्यपि आप किसी देश की स्थिति को देखकर या लोगों को देखकर कहें, ओह, वे सच में बहुत बुरी हालत में हैं, फिर भी परमेश्वर हमेशा उन दिलों में और जीवनों में जो उसके लिए खुले होते हैं उसकी योजना के अनुसार करते हैं। अतः परमेश्वर उस नैतिक पतन की अवस्था में एक विशेष रूप में कार्य कर रहा था। रूत की पुस्तक हमें परमेश्वर के कार्यों के प्रति अंतःदृष्टि प्रदान करती है। जब हम एक भ्रष्ट समाज में रहते हैं, जैसे कि आज है, जहां हमारी शिक्षा ये सिखाती है कि समाज के नैतिक मूल्य उचित और अनुचित का निर्धारण करते हैं, इस प्रकार इन मानदंडों पर आधारित हम समय को देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, सब लोग यही कर रहे हैं, और ये निर्णायक बिंदु बन जाता है, यही सही है। ये बड़ी रोचक बात है कि बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ये सृष्टि का बाइबल आधारित विवरण है। आज शिक्षित वर्ग में मानववाद व्याप्त है। वे ये नहीं कहते परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वे कहते हैं मनुष्य ने परमेश्वर को बनाया, क्योंकि उसे विश्वास करने के लिए कुछ चाहिए था। उसे नैतिक आचरण के लिए एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अतः इसलिए मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। दरअसल मनुष्य को नैतिक आचरण समाज की नैतिकता पर निर्भर करता है। बाइबल हमें बताती है, आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उस समय नैतिक आचरण परमेश्वर के द्वारा निर्धारित था, जो अपरिवर्तनीय है, परंतु मानववाद कहता है मनुष्य ने परमेश्वर सुविधा के लिए बनाया है और मनुष्य स्वयं अपने नैतिक मानदंड स्थापित करता है। इस कारण वे परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। आप सब इस मानववादी दर्शन से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। संकट तो यही है कि आप इन धारणाओं के जाल में न फंस जाए और सोचे, सब तो ऐसा ही कर रहे हैं, और यदि मैं ऐसा ना करूं तो मैं इनसे अलग ही दिखाई दूंगा। अतः समाज में स्वीकार किए जाने के लिए मुझे भीड़ के साथ एक हो जाना होगा। जब सब ऐसा कर रहे हैं तो ये उचित ही होगा। सर्वथा असत्य, ये मानववादी विचारधारा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मानदंड स्थापित किए हुए हैं। मनुष्य इन मानदंडों को कहीं ना कहीं विकृत करता है। यदि ऐसा हो तो, और यदि वैसा हो तो, वो यही प्रयास करता है कि उसे किसी न किसी परिस्थिति विशेष से जोड़ दे। परंतु सत्य तो यह है कि परमेश्वर ने हमारे आचरण के लिए मानदंड स्थापित किए हुए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है और उसके लिए नैतिक मूल्य निर्धारित किए हैं। परमेश्वर तो काम करता रहता है। आज जिस अव्यवस्थित और भ्रष्ट समाज जिसमें हम रहते हैं, परमेश्वर उन मनुष्यों में कार्य करना चाहता है जो अपने आप को परमेश्वर कार्य के लिए उपलब्ध कराते हैं। परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मेरा मन उसके लिए खुला रहे, जिससे कि वो इस भ्रष्ट संसार के मध्य मेरे जीवन में कार्य कर पाए। आज हम जिस भ्रष्टाचार के वातावरण में रहते हैं, उसे बाइबल पहले ही देख चुकी है। बाइबल ने बड़े उचित रूप से समानतावाद की विचारधारा को व्यक्त किया है। उनका कहना है, परमेश्वर की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य का विकास तो एक कोशिका प्राणी से हुआ। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय तीसरे पद में पत्रस ने कहा, अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में है। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय चौथा पद में लिखा है, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप समानतावाद की इससे अच्छी कोई परिभाषा दे। सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। यही वो विश्वास है, यही वो सिद्धांत है जो समानतावाद का है। जो कुछ सृष्टि के आरंभ से या मनुष्य के विकास से लेकर आज तक हुआ है, सब कुछ वैसा ही देखा जा सकता है। इनके विचार में ना तो पृथ्वी पर कोई प्रलय हुआ है और ना ही कोई नाटकीय परिवर्तन आया है। ये बड़ी रोचक बात है कि पत्रस ने इस वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रतिपादन से पहले ही समझ लिया था, और उसने इसकी सबसे बड़ी चूक का भी उल्लेख कर दिया था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। उन्होंने जल प्रलय के इस तथ्य की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली, जो विकासवाद की अपेक्षा भूगर्भ का एक उत्तम उदाहरण है। भूगर्भ के तथ्य विकासवाद के सिद्धांत की पुष्टि नहीं करते, वरन सत्य तो यह है कि वो विकासवाद पर प्रश्न उठाता है, क्योंकि भूगर्भ के अध्ययन में विकासवादी दिखाई नहीं देते। यदि विकासवादी रूप लाखों वर्षों में विकसित हुए हैं, तो हमारे पास उनके अवशेष भूगर्भ में पाए जाने चाहिए, परंतु ऐसा कोई अवशेष नहीं है। इसके आधार पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने जादुई चिड़िया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भूगर्भ में विकासवादी रूपों की अनुपस्थिति के कारण ही उन्होंने ऐसा किया। अब वे इसकी अपेक्षा कहते हैं जलचर और पृथ्वी के प्राणियों की उत्पत्ति अकस्मात ही बहु कोशिकाएं विकसित रूपों में हो गई। सब बकवास। आज हम ऐसे समाज में हैं जिसके लिए बाइबल कहती है खतरनाक समय आने वाला है। मनुष्य परमेश्वर की जगह अपने अभिलाषाओं से अधिक प्यार करेगा, वो उग्र हो जाएगा, वो असंयमी हो जाएगा, अर्थात आज की नाई व्यभिचारी हो जाएगा, और इस प्रकार वो आज के समाज की व्याख्या करता चला जाता है। इसी के संदर्भ में यीशु मसीह ने कहा मती 24:12 में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु इस धूर्त और विकृत संसार में परमेश्वर आज भी उन लोगों में कार्य कर रहा है जिनके मन परमेश्वर के लिए खुले हैं और समर्पित भी है। अतः न्यायियों का समय भी आज के समान ही था, जब पुरुष दिखावा कर रहे थे और अपने को सामान्य बता रहे थे और गिबा में अपनी धारणाओं का प्रचार कर रहे थे और अपने जीने की अनाचारी शैली को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर रहे थे। परमेश्वर उस समय भी उन लोगों के जीवन में कार्य कर रहा था जिनके मन उसके लिए खुले थे। रूत की पुस्तक एक और गवाही है जो बताती है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपनी योजनाओं को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूरा कर सकता है, वरन करता भी है। इसलिए रूत 1:1-2 में, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नौमी और उसके दो बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राथी अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। एप्राथी या एप्रा वो जगह थी जहां बैतलहम शहर बसा था। बैतलहम जिस जगह बसा था उस जगह का नाम एप्रा था, इसलिए उसको एप्राती कहकर बुलाया गया। क्योंकि नाम हमेशा आपकी अपनी शख्सियत को या आपकी कहानी को बताता है, इसलिए नाम बहुत दिलचस्प होते हैं। सब नामों का कोई मतलब होता है। वैसे ही उन्होंने भी अपने बच्चों के नाम रखे। वे कहते हैं कि उन नामों का आज भी मतलब होता है। आप भी अपने नामों का मतलब डिक्शनरी में देख सकते हैं कि आपके नाम का असली मतलब क्या है। एलीमेलेक नाम का मतलब है मेरा प्रभु राजा है। है ना अच्छा नाम। नौमी का नाम भी सुंदर है, उसका मतलब है खुशागवार। लेकिन महलोन नाम का मतलब है बीमार और किल्योन नाम का मतलब है उदास। ज्यादातर नाम बच्चों के जन्म की स्थिति के अनुसार रखे जाते हैं। जब एसाव का जन्म हुआ तो उसका सारा बदन बाल से ढका था, इसलिए उसको रोदार या बालों वाला बुलाया गया। इसलिए एसाव शब्द का मतलब है रोदार या बालों वाला। वो क्योंकि बालों वाला था तो ये नाम अच्छा था और उसके पीछे उसका जुड़वा भाई पैदा हुआ। वो अपने एक हाथ से अपने भाई की पैर की एड़ी को पकड़े हुए था, इसलिए उन्होंने कहा देखो वो अड़ंगा मारने वाला। उसका नाम याकूब रखा। याकूब का मतलब अड़ंगा मारने वाला। अतः ये सारे नाम उनके जन्म की परिस्थिति के अनुसार रखे गए। हो सकता है कि महलोन समय से पहले पैदा हुआ हो सकता है जन्म के समय वो अस्वस्थ रहा हो, तभी उन्होंने कहा हो ओह ये बीमार है, इसलिए उसको महलोन बीमार नाम दिया गया। और बाद में जब उसका भाई पैदा हुआ तो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता होगा, तो उन्होंने उसको उदासी बुलाया, बीमार और उदासी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे जवानी में ही मर गए, वे बीमार और उदासी थे। बेतलहम में समय समय पर अकाल और सूखा पड़ता रहता था, पिछले साल भी सूखा पड़ा था, अब इस साल फिर अकाल पड़ा। उन्होंने सुना कि मोआब में एक बहुत अच्छी जगह है, इसलिए एलीमेलेक ने यह सोचा कि सब कुछ बेचकर अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर मैं मोआब को चला जाऊं, जो कि ऊंचे पर बसा था और बहुत उपजाऊ था। यहां तो हर साल सूखा और अकाल पड़ता है। और मोआब में एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। दोनों लड़कों ने मोआब की लड़कियों से शादी कर ली, एक ने ओरपा नाम की लड़की से और दूसरे ने रूत नाम की लड़की से शादी कर ली। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि ये दोनों बेटे भी निसंतान मर गए। रूत पहला अध्याय पद 8 में। तब नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। इस पारिवारिक संकट के समय इन दोनों लड़कियों ने बहुत संयम दिखाया। इस संकट के समय उन्होंने नौमी को प्यार, शांति और करुणा के साथ संभाला, इसलिए नौमी भी चाहती थी कि जो करुणा उन्होंने दिखाई है उसी के अनुसार उन्हें भी मिले। रूत पहला अध्याय पद 9 में। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तुम दोनों को अच्छे लड़के मिल जाएंगे और तुम शादी कर लो, तुम्हारा एक सुखी वैवाहिक जीवन हो, और तुम अपने पति के घर में अपना बाकी जीवन अच्छे से गुजारो। वो उन लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ा रही थी। हे लड़कियों, अच्छा हो कि तुम अपने परिवारों में चली जाओ, अच्छा हो कि तुम किसी से शादी कर लो। वो दोनों लड़कियां उसके साथ कुछ दूर रास्ते पर चली और बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोई। तब नौमी ने उनसे कहा, देखो लड़कियों, मैं बच्चा पैदा करने को बहुत बूढ़ी हूं, अगर मुझे आशा भी हो और आज मैं शादी कर लूं और कल गर्भवती हो जाऊं, तो क्या तुम उनके शादी के लायक बड़े होने तक इंतजार करना चाहती हो? ना तो तुम इंतजार करना चाहोगी और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए तुम अपने अपने घर जाओ, पति ढूंढो और शादी करो। रूत पहला अध्याय पद 14, 16 और 17। और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा और विदाई लेकर अपनी मां के घर लौट गई, परंतु रूत उससे अलग न हुई। पद 16 में उसने ये सुंदर वचन कही। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग कर छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। रूत अपनी सास को बहुत अधिक प्यार करती थी। उसने कहा, देखिए मैं आपके साथ ही रहूंगी, मुझे आपको छोड़ने को या भूलने को मत कहिए और ना ही मुझे घर जाने को कहिए, आप जहां जाएंगी मैं भी वहां जाऊंगी। इससे समझ में आता है कि दोनों सास और बहू के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता था। जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। अतः वे दोनों इसराइल लौट आई। रूत पहला अध्याय पद 18 और 19 में, जब उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उसे और बात न कही। सो वे दोनों चल निकली और बेतलहम को पहुंची। जब वे बेतलहम पहुंची तो लोग खुश हुए और कहने लगे, नौमी वापस आ गई। तब नौमी ने कहा, मुझे नौमी मत कहो, आइए उनकी भाषा में कहे, ओ खुशागवरी आ गई। उसने कहा, मुझे खुशागवर मत कहो। रूत पहला अध्याय पद 20 में, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मारा, कड़वा, मुझे खुशागवार मत कहो, कड़वी कहो, परमेश्वर ने मुझसे बहुत कड़वा व्यवहार किया है। अब ये दिलचस्प बात यह है कि वो सारे संकट का इल्जाम परमेश्वर पर लगाती है, परमेश्वर ने मुझसे कड़वा व्यवहार किया है। हमारे लिए ये बहुत स्वाभाविक है कि हम अपनी सारी परेशानियों के लिए परमेश्वर को दोष देते हैं, खास तौर से मौत के लिए। यीशु मसीह जब बैतनिया पहुंचे, लाजर मर चुका था, वो बहुत बीमार था। उसकी बहन ने यीशु को तुरंत समाचार भेज दिया था, जल्दी आ, तेरा सबसे प्यारा दोस्त बीमार है। यीशु दो दिन और रुके, फिर बैतनिया को चले। अब बैतनिया से यर्दन पार संदेश पहुंचाने में दो दिन का समय लगता था। यीशु वहां दो दिन और रुक गए और यर्दन पार से बैतनिया आने में भी उनको दो दिन लगे। इस प्रकार उसे संदेश पाने से लेकर लाजर के घर पहुंचने तक 6 दिन का समय लगा। जब वो वहां पहुंचा, 6 दिन बीत चुके थे। उसकी बहनें जानती थी कि अब बहुत देरी हो गई है, परंतु वे इस देरी का कारण नहीं समझती थी। मार्था यीशु से भेंट करने के लिए आई और शिकायत करते हुए कहा, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु जब हमें तेरी आवश्यकता थी तब तू कहां था? प्रभु तूने आने में शीघ्रता क्यों नहीं की? हमने तो तुझे संदेश दिया था, शीघ्र जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। प्रभु तुझे देरी कैसे हुई? कहने का अर्थ यह है कि वो अपने भाई की मृत्यु का दोष यीशु पर डाल रही थी। प्रभु तू उसे मौत से बचा सकता था। हम जानते हैं ये सच है, हम जानते हैं जीवन परमेश्वर के हाथ में है, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन दान दे सकते हैं। हम जानते हैं आदमी की जिंदगी के दिन परमेश्वर ही देता है, फिर भी परमेश्वर को मौत के लिए दोष देना स्वाभाविक है। एक तरीके से तो ये ठीक है, परंतु दूसरे तरीके से हम केवल कड़वाहट महसूस करते हैं, क्योंकि मौत के बारे में हमारी राय एकदम गलत होती है। ओह, उसके सामने पूरा जीवन बाकी था, सब कुछ चला गया, कितने शर्म की बात है। जब मेरा सुंदर जवान भाई मरा था तब मैंने ये सब कुछ सुना था, रूपवान, आकर्षक, हष्टपुष्ट पुरुष जिसके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। वो एक अच्छा व्यापारी था, उसको व्यापार की अच्छी समझ थी, वो पैसा लगाता था और सब कुछ ठीक था। उसने एक हवाई जहाज भी खरीदा था ताकि अपने व्यापार में आने जाने में आराम हो, परंतु हवाई जहाज की दुर्घटना में मर गया। लोग कहते थे, कितने दुख की बात है कि उसके सामने पूरा जीवन था, कितने दुख की बात है वो मुझसे पहले वहां चला गया। जब मैं वहां पहुंचूंगा वो वहां के हर स्थान को जानता होगा, वो मुझे वहां घुमाएगा और फिराएगा। आपको पता है वो वहां परमेश्वर के पास है, इसमें बुरा क्या है? वो वहां परमेश्वर के राज्य में है तो क्या बुरा है? जो दुख की बात है वो ये है कि मैं उसे याद करता हूं। दुख की बात यह है कि हम दोनों मिलकर जो मजा किया करते थे वो मैं याद करता हूं। वो बहुत उत्तेजित किस्म का व्यक्ति था। वो हमेशा पागलपन की मजेदार हरकतें किया करता था। मैं याद करता हूं, मैं दुखी हूं क्योंकि मैंने अपना भाई खो दिया, परंतु मैं उसके लिए दुखी नहीं हूं। मैं उसके परमेश्वर के पास होने से जलता हूं। कितना महिमाविंत है। गैस की लाइन में लगने का झंझट और दूसरा कोई झंझट जो हम दिन भर झेलते हैं, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। कैसी अद्भुत अवस्था। मैं भी कुछ दिनों में उसके साथ होऊंगा। आपने देखा मृत्यु के बारे में हमारे विचार, हमारा व्यवहार कितना गलत है। हम इस जीवन को ऐसे देखते हैं जैसे ओ ये कितना कीमती है, कितना अद्भुत है, इसको छोड़ना नहीं, इसको पकड़े रहना। ये सब केवल इसलिए कि जिस जीवन का उसने हमें वादा किया था उसकी अनिश्चितता के कारण हमारे विश्वास में कमी आई। मुझे खुशागवर मत बुलाओ, मुझे कड़वी बुलाओ। ये बहुत दुख की बात है। जब भी आपके जीवन में किसी अनुभव के कारण कड़वाहट आती है तो दुख ही होता है, क्योंकि कड़वाहट दुख देती है, चोट पहुंचाती है। हर वो बात से जो कड़वाहट पैदा करती है उससे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। कड़वी जड़ से हमेशा कड़वा फल ही निकलता है। हमें हमेशा कड़वाहट के प्रति सचेत रहना चाहिए। कड़वाहट एक व्यवहार है जिसे मैंने परिस्थितियों की वजह से चुना। मेरे पास कड़वाहट कहीं से नहीं आई, मैंने कड़वाहट को खुद चुना। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ठीक ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद बेहतर इंसान बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इन सबसे ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा है। वे कहते हैं सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, मैं परमेश्वर का हूं और वही मुझे सामर्थ देता है, और वे अच्छे लोग बन जाते हैं। मैं कुछ ऐसे महान लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना सारा जीवन लगातार दुख में गुजारा, और इन दुखों की वजह से उनमें एक ऐसे चरित्र का निर्माण हुआ जो दूसरों से एकदम अलग है। जिन्होंने कभी दुख दर्द को नहीं देखा, इन दुख और दर्द के बीच आप परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं और जिंदगी ताकतवर और मजबूत हो सकती है, या फिर आप अपने जीवन में कड़वाहट भर सकते हैं और जिससे आपका जीवन कड़वा, तंगी एवं चिंता में हो सकता है। दुख की बात है जब किसी इंसान के जीवन में कड़वाहट भरती है। ये सब हमारा किसी परिस्थिति को देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। मैं किसी बात को देखकर कड़वाहट से भर सकता हूं और कह सकता हूं, अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे संग ऐसा क्यों होने दिया। मेरा जीवन चिंता से भरा हो सकता है, मैं बहुत परेशान रह सकता हूं और इसका असर मेरे शरीर पर होता है, या फिर मैं कह सकता हूं परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है, वो मुझे प्यार करता है। मैं जानता हूं कि वो सब कुछ देख रहे हैं। ये जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, परमेश्वर अपनी योजना पूरी कर रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर तू जानता है कि मैं ये सब नहीं चाहता, तो भी तू अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर, क्योंकि मैं तेरे स्वरूप में बना हूं। परमेश्वर के महान प्यार से भरा हुआ इंसान बन सकता हूं। प्यार, विश्वास और आशा के फलों सहित। नाओमी ने भी एक पल के लिए ऐसा ही गलत तरीके से जवाब दिया, मुझे खुशागवर मत कहो, मुझे कड़वी कहो। कैसे दुख की बात है कि आप परिस्थितियों को अपने जज्बातों पर हावी होने देते हैं और परमेश्वर के प्रति कड़वाहट से भर जाते हैं। नाओमी ने भी सोचा कि अब सब खत्म हो गया। उसने सोचा कि यह जीवन का अंत है। वो परमेश्वर की योजना के बारे में नहीं जानती थी। उसने कहा, रूत पहला अध्याय पद 21 और 22 में, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? इस प्रकार नाओमी मोआबिन बहु रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और वे जौ काटने के आरंभ के समय बेतलहम नगर में पहुंची।